बना देंगे। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत भर आएगा, उसे शिव का मीत बना देंगे।
आज पैरे बाबा के घर भट्टी का तीसरा दिन है। तीसरे दिन का पहला सत्र शुभारंभ हो रहा है। आज के सत्र का शुभारंभ कर रही है हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी। डॉक्टर सविता बहन जी बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक ज्ञान में चल रही हैं। चलते हुए बंधन होते हुए भी आपने निश्चय बुद्धि से विजयी बन सेवारत हो गई। आपका अहो सौभाग्य रहा कि आप डबल डॉक्टर होने के नाते से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त किया, क्योंकि आप दादी जी की पर्सनल डॉक्टर बन के सेवा किया। तो ये भाग्य आपने कल्प कल्प के लिए नोंद कर लिया। आप एक डॉक्टर हैं मधुर स्वर वाली, क्योंकि वैसे कहा जाता है डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड, कि इसी तरह से डबल डॉक्टर होने के नाते से बहुत ही स्नेही मूर्त होकर के सबका दिल जीती हैं। और आप यहाँ महिला विंग वुमेन्स विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। अभी हम आपसे सुनेंगे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है माया जीत विकर्मा जीत और कर्मातीत। आदरणीय सविता बहन जी आप इस पर प्रकाश डालेंगे अपनी मधुर वाणी से। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। आप सभी यहाँ तीन दिन से शांतिवन में भट्टी कर रहे हैं। आप सभी खुश हैं शांतिवन में भट्टी करके? जो समझते हैं हम बहुत खुश हैं वो हाथ उठाएं। तो बाबा ये भी हमें समय प्रति समय लॉटरी देते रहते हैं। वैसे तो हम सेंटरों पर भी भट्टी करते हैं, लेकिन मधुबन में आकर के भट्टी करना माना सभी बातों से फ्री होकर के केवल ज्ञान और योग से अपनी बैटरी को चार्ज करना है। तो इसीलिए ये जो समय हमें मिलता है, तीन चार दिन का जो टाइम मिलता है, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होता है। कमाई का समय होता है, जैसे कमाई की सीजन होती है ना, बाबा कहते हैं तो सीजन में कमाई कर लेते हैं तो फिर साल भर निश्चिंत रहते हैं। तो ऐसे ही जब ऐसे प्रोग्राम बनते हैं तो वो हमारे लिए हमारी कमाई की जैसे सीजन हो जाती है। तो जैसा आज का विषय है माया जीत बनना, विकर्मा जीत बनना, कर्मातीत बनना, ये हमारे ज्ञान का लक्ष्य है। जो देवताएं हैं वो माया जीत हैं, विकर्मा जीत हैं, और कर्मातीत बनने के बाद ही मनुष्य से देवता बनते हैं। तो बाबा ने हमें नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बनाया है, जिससे हमें समझ मिली कि आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में शुद्ध है, पवित्र है, और इसीलिए नेचुरल ही माया जीत है। परम धाम में और सतयुग त्रेता में माया होती ही नहीं है। लेकिन जब द्वापर युग शुरू होता है, तब द्वापर युग में माया रावण का प्रवेश होता है। दोनों ही एक सिनोनिम है। और सबसे पहला रूप जो माया लेती है वो है देह अभिमान। देह अभिमान ही सब विकारों की जड़ है, ऐसे भी कहते हैं पाप मूल अभिमान, है ना? तुलसीदास जी का एक दोहा है इसके ऊपर, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तो अभिमान से ही द्वापर युग में मनुष्य पाप करना शुरू करते हैं और तब से ही आत्मा की गिरावट शुरू हो जाती है, और कलयुग तक आते आते आत्मा पूरी तरह से पतित तमो प्रधान हो जाती है, यानी माया के वश, विकारों के वश। और फिर बाबा आकर के हमें फिर से माया जीत बनाते हैं। तो जब बाबा हमें फिर से पतित से पावन बनाते हैं, तो माया के साथ हमारी युद्ध शुरू हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प से हम उसके ग्राहक हैं। तो कोई भी अपने ग्राहक को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ता है, इसीलिए कहते हैं कि हम वॉरियर्स हैं, युद्ध के मैदान पर हैं, अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। युद्ध के मैदान में है लेकिन हमारा युद्ध दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये गुप्त युद्ध है। और उसकी यादगार क्या दिखाई, कौरव पांडवों की युद्ध दिखा दी, महाभारत की युद्ध दिखा दिया, पर वास्तव में ये कौन सा युद्ध है? ये युद्ध है हम पांडवों का माया के साथ, पांच विकारों के साथ। और उसमें साथी कौन है? जैसे उसमें दिखाया श्री कृष्ण उनके सारथी और साथी बने, तो हमारा साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा इसमें हमारे साथी हैं। तो विजय निश्चित है, जैसे पांडवों को पूरा निश्चय था कि हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? तो हम भी माया जीत या विजयी कल्प पहले भी बने थे और हम ही बनेंगे, और तो कोई नहीं होंगे। तो माया के लिए बाबा ने हमें, क्योंकि हम युद्ध में है ना, तो बाबा ने हमें अस्त्र शस्त्र दिए हैं। युद्ध तो अस्त्र शस्त्रों से ही किया जाता है, तो कौन से अस्त्र शस्त्र मिले हुए हैं हमें? कौन से अस्त्र शस्त्र मिले हैं? ज्ञान और योग के। ज्ञान हमारे दिव्य अस्त्र हैं। तो जो भी बाबा ने हमें नॉलेज दी है, ज्ञान की पॉइंट समझाई है, वो सब हमें माया पर विजयी बनाती है। अब काम विकार पर विजयी कैसे होगी? और ये अस्त्र शस्त्र भी हमारे कब काम करेंगे? जब उसका पूरा अभ्यास हमें होगा। जैसे युद्ध के मैदान में भी सैनिक जाते हैं तो वो शस्त्रों का अभ्यास करते हैं, तब सही समय पर दुश्मन पर सटीक निशाना लगता है, और नहीं तो उल्टा हो सकता है, दुश्मन निशाना लगा देगा और हार गए तो हमारे देश पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। तो यहां भी ऐसे ही है कि बाबा ने जो हमें शस्त्र दिए हैं, अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, तभी जब माया हम पर वार करती है तभी वो हमारे शस्त्र काम करते हैं, और नहीं तो फिर माया विजयी हो जाती है। बाद में हमें याद आता है, अरे ये तो बाबा के श्रीमत के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए था। तो कहने का भाव, जो मुरली हम रोज सुनते हैं, वो मुरली केवल सुनना नहीं है, हमें सुन करके हम खुश होते हैं, हमें सुख मिलता है, वो अलग बात है। मुरली सुनने से शांति मिलती है, खुशी होती है, लेकिन वो मुरली को विचार सागर मंथन करके अपना बनाना, ये है अभ्यास करना। रोज उस पर अपना विचार चले कि बाबा ने ये पॉइंट मुझे कही, हमें दी है, ये हमें कैसे विजयी बना सकती है, और वो हम यूज करते हैं तो हम विजयी होते हैं। आज आत्मा का ज्ञान हमें सहज ही देह विमान के ऊपर विजयी बनाता है, लेकिन अब आत्मा हमें याद रहती है या देही अभिमानी स्थिति रहती है हमारी, या सिर्फ योग करने तक थोड़ा हम अटेंशन देते हैं, बाद में फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो यदि मेरी आत्मिक दृष्टि वृत्ति है और हम इसका अटेंशन भी रखते हैं, चलो सारा समय हमें याद ना भी रहे क्योंकि बहुत सारे काम हमें बुद्धि के भी करने होते हैं, लेकिन फिर भी अगर समय पर हमारा बीच बीच में अटेंशन रहता है तो हम माया के बहुत से रूपों पर सहज ही विजयी हो जाते हैं। अब जैसे हमने बात किया काम विकार की बात, वो दैहिक दृष्टि से उत्पन्न होता है, और बाबा ने हमें क्या कहा है, देखो ही कहां, देखना ही कहां है, मस्तक में देखो ही, मस्तक मणि को देखो ही, आत्मा को शरीर पर नजर ही नहीं जानी चाहिए। तो अगर शरीर पर नजर गई तो फिर प्रभावित हो सकते हैं, माना सभी पर नहीं होते हैं, लेकिन मानो किसी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, कोई सुंदर है, या हमें उसकी कोई बातचीत व्यवहार का तरीका, यानी उनका बहुत मीठा स्वभाव है, या वो हमें बहुत सहयोग देते हैं, सेवा करते हैं, या कोई भी ऐसी बातें हैं, अगर शरीर पर नजर गई तो सब बातों पे। आजकल बाबा ने कल मुरली में कहा ना, कितनी फैशन की दुनिया है, लोग तो अपने को आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या करते हैं आज के जमाने में, कैसे कैसे बाल बनाते हैं, कैसे कैसे मेकअप करते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं कि आप न चाहते हुए भी उनके और आकर्षित हो जाओ, और अगर हम आकर्षित हो गए तो क्या होने वाला, ये माया के रूप है ना, माया अपने अपने रूप धरती है। जाने का समय अभी देखो, पहले लोग सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते थे, तो बाबा ने तो मना कर दिया कि हमें सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने नहीं जाना है, तो ठीक है छूट गया, लेकिन माया ने सोचा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, तो कहां आ गई, सिनेमा माना सिन की माँ, तो हमारे घर में ही आ गई, हमारे घर में ही सिनेमा आ गया। फिर कहा टीवी भी नहीं देखना है, चलो बाबा के बच्चे हम टीवी नहीं देखते हैं, तो कहां आ गई माया, हाथ में ही आ गई कि चलो मां मत देखो, इधर ही देख लो। तो माया भी तो अपने रूप रचती है ना, तो ये हमें परखने की शक्ति चाहिए कि माया कैसे हमको वश में करने की कोशिश करती है कि हम पूरी तरह से उसके काबू में आ जाएं। तो आज की दुनिया ऐसी ही है कि गलत गलत तरीकों से भी हमें आकर्षण करने की कोशिश करें। जैसे हमारे ही तो यादगार है ना शास्त्रों में कि जिन्होंने भी विजय पाने की कोशिश की, अभी जैसे विश्वामित्र जी तप कर रहे थे तो उनकी परीक्षा लेने कौन आ गई, मेनका आ गई उनके सामने, है ना। ऐसे ही नारद जी तप कर रहे थे तो उनकी भी परीक्षा हो गई, सब जानते हैं ना, बाबा कहते हैं ना तभी कि आपने अपनी शक्ल देखी है, पहले अपनी शक्ल देखो कि आप लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो क्या क्या कहानी थी उसकी कि वो तप कर रहे थे और इंद्र ने सोचा, इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता है किसी का भी तप, शास्त्रों में ऐसे ही दिखाते हैं। तो जब उसको पता चला कि नारद जी ऐसा तप कर रहे हैं तो उसने सोचा कि इनका तप तो भंग करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा स्वर्ग तो गया। तो उन्होंने भेजा कामदेव को और कामदेव ने पूरी कोशिश कर ली, वो उनके तप को भंग नहीं कर पाया। तो जब नारद जी को पता चला कि इंद्रदेव का ये इंटेंशन था, और जब इंद्र को पता चला कि कामदेव जी फेल हो गए, तो फिर उनको बहुत अपने ऊपर ग्लानी हुई और उन्होंने जाकर के उनसे माफी मांगी, नारद जी से माफी मांगी। तो नारद जी को थोड़ा सा गर्व हो गया, अहंकार आ गया कि लो मेरे जैसा भक्त कोई नहीं, मैंने तो इस पर भी विजय पाली। तो वो गए विष्णु जी के पास और उनको जाकर के सारा समाचार सुनाया कि देखो मैंने तो इस पर भी विजय पाली। तो फिर विष्णु जी समझ गए कि इसको थोड़ा सा अहंकार हो गया है और ये मेरा प्रिय भक्त है, सच्चा भक्त है, इसके अहंकार से इसको मुक्त करना पड़ेगा, तो इनकी असलियत दिखा दो इनको। तो उन्होंने क्या किया, माया रची उनके लिए। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, देखो कि बाबा भी, इसीलिए वो यादगार क्यों बने हुए हैं, क्योंकि ये ऐसी परीक्षाएं हमारे सामने भी आती हैं कि वो परीक्षा आने पर हम कितने विजयी बनते हैं। तो वो परीक्षा क्या ली, जैसे ही वो धरती पर आए तो वहां पर एक बहुत समृद्ध नगरी, बहुत सुंदर नगरी और उसमें राजमहल, और वो अपनी धुन में चले जा रहे हैं। नारद जी राजमहल में पहुंच गए तो राजा जो थे वहां के वो उनसे मिले, और जब उन्होंने देखा कि वो ऋषि ही मेरे महल में आ गए तो बहुत खुश हो गए। और उन्होंने सारा समाचार सुनाया कि ये सारी नगरी को मैंने सजा रखा है क्योंकि मेरी इकलौती बेटी राजकुमारी का स्वयंवर होने जा रहा है। तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि आप इसकी हस्तरेखा देखिए और बताइए कि जो इनका भविष्य युगल है वो कैसा होगा। तो उन्होंने उसका हाथ देखा तो हैरान रह गए कि अरे इसके हाथ में तो इसका भविष्य ऐसा है कि जो भी इसका युगल होगा वो तो विश्व का मालिक होगा, पूरे विश्व का मालिक होगा, त्रिलोक का मालिक होगा। तो उसने कहा इसका भाग्य तो इतना ऊंचा है। फिर देखा कि वो बहुत रूपवती भी थी तो पूरी तरह से वो उनके उसमें, जैसे दोनों चीजों ने आकर्षित किया कि एक तो प्राप्ति इतनी ऊंची और दूसरा ये इतनी रूपवती भी है। तो उनके मन में इच्छा हो गई, अभी तक तो वो ब्रह्मचारी थे तो मन में इच्छा हो गई कि मेरा इसके साथ किसी तरह से विवाह हो जाए। तो पहुंच गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी को अर्जी दी कि भगवान मुझे अपना रूप दे दीजिए, मुझे वो राजकुमारी का स्वयंवर है उस एक दिन के लिए मुझे सुंदर बना दीजिए कि वो मेरे गले में वरमाला डाले। तो फिर क्या जवाब दिया विष्णु जी ने कि जो आपके हित में होगा वो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा इनडायरेक्ट जवाब दिया। अब वो वापस आ गए और बहुत खुशी खुशी, वो उस दिन स्वयंवर था, बैठे स्वयंवर में और राजकुमारी जी जो है वो वरमाला लेकर के पूरी सभा में घूम रही थी। तो उन्होंने उनके गले में माला नहीं डाली, वो अपेक्षा कर रहे थे कि विष्णु जी का रूप है मेरा तो मेरे गले में ही माला आएगी, लेकिन उसने वरमाला जो है वो दूसरे राजकुमार के गले में डाल दी। तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि इधर क्यों वरमाला डाल दी। फिर बाद में थोड़ा निराश होकर के वो जब सभा से उठ करके गए तो वहां जो तालाब था, झील थी गांव में, वहां जाकर के पानी में अपने आप को देखा तो देखा कि मेरा जो मुंह है वो तो बंदर का है, माना विष्णु जी का रूप नहीं है, मुंह बंदर का बना हुआ है। तो उनको इतना क्रोध आया कि ये भगवान ने मेरे साथ क्या किया है ना, धोखा दिया मुझे। तो पहुंच गए वहां पर तो देखा शिव सागर में विष्णु जी के साथ जो स्वयंवर हुआ था जिस राजकुमारी का, वही उनके साथ बैठी हैं। तो उनको ये भी बहुत क्रोध आया कि मतलब मैंने, मुझे स्वयंवर करना था और ये खुद विष्णु जी स्वयंवर करके इसको ले आए यहाँ पर। तो सुनते हैं जो शास्त्रों की कथा अनुसार कि उन्होंने उनको श्राप दिया कि आपने मेरे साथ ऐसा किया तो आपको भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और स्त्री वियोग को सहना पड़ेगा और फिर वानरों की सहायता, आपने मुझे बंदर बनाया तो आपको वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन बाद में जो वो राजकुमारी थी वो लक्ष्मी जी के रूप में बदल गई और वो जो थे वो जो कहा कि विष्णु जी, तो जब उसको समझ में आया कि ये तो मेरी परीक्षा ली है भगवान ने, ऐसा तो कुछ था नहीं, और मैं उस परीक्षा में फेल हो गया, तो क्षमा मांगी, लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका था। तो कहने का भाव ये है कि माया किस रूप में हमारे सामने आ रही है उसको परखने की शक्ति चाहिए। जैसे वो हम ये भी कहते हैं राम की कहानी में भी कि सीता सोने हिरण को परख नहीं सकी। जब सोना हिरण आया तो वो नहीं समझ सकी ये मायावी है या असली हिरण है, और उसने राम को मजबूर किया जाओ जाओ इसके पीछे। जब राम गए और उन्होंने उस मायावी को मार दिया तो उसने राम जैसी आवाज निकाल दी, तो ये भी नहीं परख पाए कि ये राम की आवाज है या उस राक्षस की आवाज है। और उसने जबरदस्ती लक्ष्मण को भेजा, जब लक्ष्मण को जाना था तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी कि आप इस रेखा के बाहर नहीं आना, आपकी इससे सुरक्षा होगी। और फिर क्या हुआ, रावण आया तो वो रावण को भी नहीं परख सकी कि असली साधु है या रावण है। और फिर रेखा लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया और कहां फंस गई, रावण के चंगुल में फंस गई, क्योंकि परख नहीं पाई। तो माया रॉयल रूप लेती है कई बार। तो यही कहने का भाव है कि बाबा ने जो हमें अस्त्र शस्त्र दिए हैं वो हमने यूज कर लिए तो हम विजयी हो जाएंगे, और नहीं तो माया के वो रूप बहुत फंसाने वाले हैं और हमारा विजयी होना फिर मुश्किल होता है। अब मानो क्रोध की स्थिति पैदा होती है, बहुत कारण बनते हैं हमें उस पर जीतने के लिए। बाबा ने शांति की शक्ति दी है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर की संतान हूं। और जो भी आत्मा माया के वश होती है, मानो जो भी क्रोध कर रहा है या क्रोध की स्थिति पैदा कर रहा है वो खुद माया के परवश है, तो फिर उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, उसके प्रति हम रहम दिल रहें, उसको भी हम सहयोग दें। कहीं आग लगी है तो फायर ब्रिगेड क्या करती है, आग बुझाने का काम करती है ना, फायर ब्रिगेड का ये काम है। तो हमारा कर्तव्य कैसा है, उस आग में घी डालना नहीं। जैसे अभी संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि क्या कहते हैं बच्चे, कोई झूठ बोलता है तो फिर मुझे गुस्सा आता है, वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, पर क्यों गुस्सा आया, क्योंकि उसने झूठ बोला। तो उसने झूठ बोला, उसने गलत किया, तो वो तो फेल है ही, लेकिन अगर आपने गुस्सा किया तो आप पास हो गए, क्या कहेंगे, फेल हो गए। तो बाबा ने यही कहा कि जो फेल है वो फेल को कैसे पास करा सकता है। तो अगर वो सामने वाला ऐसा कर रहा है तो भी हम शांत रहते हैं और फिर भी उनको सहयोग देते हैं, तब हम माया जीत बने ना, तब हमने उस पर जीत पाई। ऐसे ही कोई लोभ की स्थिति पैदा होती है तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, माना इच्छाओं से परे हम हैं तभी हम उसमें विजयी बन पाएंगे। नहीं तो प्रलोभन लाने वाले बहुत सारे आज माध्यम हैं, कितने साधन हैं, सुविधाएं हैं, तो इच्छाएं पैदा होना तो बहुत आसान है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया है, क्या किसको महत्व देना है, साधना को महत्व देना है या साधनों को महत्व देना है, ये साधन हमारे साथ जाने वाले हैं या हमारी साधना हमारी कमाई कराने वाली है। साधन तो अल्पकाल के हैं ना, तो बाबा के ज्ञान को सही समय पर यूज करेंगे तो उनके प्रभाव से हम बच पाएंगे। ऐसे ही मोह को बाबा कहता है परिवर्तन करो, मेरा मेरा जो हम करते हैं तेरा है वो, सब कुछ बाबा को दे दिया, हम बाबा पर बलिहार गए हैं, बाबा को समर्पित किया है, हम ट्रस्टी हैं। तो जिनमें भी मोह जाता है, मोह की रगे जाती हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे पति हैं, चाहे जो भी, जिनको भी हम मेरा समझते हैं, वो मेरा मेरा नहीं, लेकिन बाबा आपकी जिम्मेवारी है, आप संभालते हैं, आप करण करावनहार हैं, आप करते हैं। और ऐसे ही जो अहंकार है, अहम भाव है, उसको शुद्ध अहम में परिवर्तन करना है तो हम जीत जाएंगे। शुद्ध अहम, बाबा ने बताया सोमान, उसको शुद्ध नशा कहा, वो भी नशा है, अहंकार भी नशा है, वो उल्टा नशा है ना। मैं सो एंड सो हूं, आज दुनिया में लोग कितना रखते हैं उसका, कि मैं इतने ऊंच पद पर कार्य कर रहा हूं, आज मेरे अंडर में या मेरे उसमें इतना सब कार्य होता है जो मेरे द्वारा ही होता है, मेरी ही जिम्मेवारी है। लेकिन यहां बाबा ने हमें रुहाब दिया, रौब नहीं रुहाब। मैं कौन हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं बोल सकते हैं ना, सबको तो मालूम है हम कौन कौन है। मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मैं ही पूज्य आत्मा हूं, मैं ही पवित्र आत्मा हूं। तो ये मेरा सही परिचय है। लेकिन वो जो आज के समय में जो भी हम समझते हैं अपने आप को, वो हमें अभिमान में ले आते हैं। कई बार बाबा कहता है कि बच्चों को भी हो जाता है, चलो वो अशुद्ध अभिमान तो छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी विशेषताओं का अभिमान हो जाता है, अपनी बुद्धि का अभिमान हो जाता है, अपने गुणों का, अपनी सेवा का। मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता, मेरी जैसी प्लानिंग बुद्धि किसी की नहीं है, मेरी जैसी कलाएं किसी में नहीं है, तो ये भी देने वाला दाता कौन? बाबा हमेशा कहता है कि ये मत भूलो कि किसने हमें ये विशेषताएं दी। बाबा ने हमें सेवा करना सिखाया ना, तो सदा ही निमित्त निर्माण भाव, जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा ने सदा ही निमित्त भाव से, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, बच्चों का मैं आज्ञाकारी सेवाधारी हूं। सुनते हैं ना मुरली में कितनी बार बाबा कहते हैं हमें ना, और इसीलिए बच्चों को नमस्ते, पहले हम बाबा की नमस्ते सुनते हैं, फिर हम बाबा को नमस्ते करते हैं, और इसलिए हमारा गीत भी बना हुआ है, बाबा कितने निरहंकारी जो बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो बाबा के समान ही हमें बनना है, तब हम सहज माया जीत बनेंगे। आज माया के लिए कई बार लोग कहते हैं, जो सन्यासी हैं वो कहते हैं धन ही माया है, या फिर वो स्त्री को भी माया कहते हैं और इसीलिए वो छोड़ करके चले जाते हैं, स्त्री को नरक का द्वार बता दिया। मतलब माया को किस रूप में भक्ति में देखा जाता है। बाबा कहता है माया का उनको अज्ञान है, उनको यही पता नहीं कि माया का सही स्वरूप क्या है। तो वास्तव में धन माया नहीं है, धन तो संपत्ति है, धन से तो सुख होता है, पर धन के प्रति जो लोभ आ सकती है वो माया है। अब सतयुग में भी तो हम कितने धनवान होते हैं, पद्मा पदम पति होते हैं, वो थोड़ी माया है। और उससे कितना सुख है सतयुग के अंदर, सब वैभव है ना। लेकिन जहां लोभ आ गया, स्वार्थ आ गया, अपने प्रति जो सोचते हैं वो फिर माया का रूप ले लेता है। तो ऐसे नहीं कि धन का त्याग कर दो बिल्कुल, हमारी आवश्यकता के लिए धन तो चाहिए ही ना। और बाबा भी हमें क्या कहता है, बाबा हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, लास्ट तक भी, जब तक विनाश होगा परिवर्तन होगा तब तक भी बाबा बंधा हुआ है अपने बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, और दाल रोटी सबको मिलेगी ये भी बाबा कहते हैं। तो इसीलिए इस समय तो हमें बहुत कैसे रहना है, सिंपल रहना है, त्यागी तपस्वी जीवन में रहना है। इस समय हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा जो जीवन है वो बहुत, जैसे समझते हैं ना कि एक होता है साधारण, एक होता है मीडियम और एक होता है लग्जरियस, माना सुखपूर्ण, मतलब सब सुख के साधन पूरे हों हमारे। तो बाबा कहते हैं अभी ब्राह्मण जीवन तो मध्यम, बीच का जो है हमारी लाइफस्टाइल जीवन शैली होनी चाहिए। हमारा उठना बैठना खान पान रहन सहन सब मध्यम होना चाहिए। तो धन माया नहीं है, धन आवश्यकता है, ऐसा हम कहेंगे। और स्त्री को भी जो उन्होंने इतना अपमानित किया, अब वास्तव में स्त्री थोड़ी माया है, स्त्री के प्रति जो काम विकार की दृष्टि है वो माया है। तो वो अपनी कमी तो नहीं देख रहे, लेकिन किसको बता दिया, स्त्री को ही दोष दे दिया कि वही नरक का द्वार है, इसलिए उससे दूर चले जाओ, घर बार छोड़ करके स्त्री का मुंह भी मत देखो। कितने सन्यासी हैं जो कितने पंथ हैं जो स्त्री का मुंह ही नहीं देखते हैं। एक स्वामी नारायण पंथ को तो मैं जानती हूं। तो बाबा ने तो हमें क्या कहा, क्या देखना है, मुंह देखने की बात नहीं, देखना ही, क्योंकि हम सब आत्मा रूप में तो भाई भाई है ना। ये स्त्री पुरुष तो हमें संसार में रोल मिला है, लेकिन ओरिजिनल तो हम सब आत्मा है, और आत्मा का कोई जेंडर नहीं, आत्मा स्त्री पुरुष है ही नहीं, तो आत्मा तो भाई भाई है, एक ही परमपिता परमात्मा की हम संतान है। तो जब हम बेहद की दृष्टि वृत्ति में आ जाते हैं तो देह की सीमाओं से ही ऊपर उठ जाते हैं, अपने आप वो परिवर्तन आ जाता है। तो माया जीत बनने की विधि बाबा ने हमें यही बताई है कि बाबा ने जो हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, नॉलेजफुल बनाया है, हर परिस्थिति में जब माया का वार होता है, सही समय पर हमें अपने नॉलेज के अस्त्र शस्त्रों को प्रयोग करना है, वो कार्य करे। ऐसे नहीं कि मैंने मेरे मुंह से निकल गया फिर मैं सोचती हूं अरे ये तो मुझे नहीं बोलना था, तो काम नहीं किया ना हमारी नॉलेज ने, क्योंकि हमने उसका अभ्यास ही नहीं किया। अब ड्रामा की नॉलेज बाबा ने दी है, ड्रामा की नॉलेज फुल स्टॉप लगाने में हमें मदद करती है। बाबा कहते हैं हर बात में कल्याण है, और जब हम कल्याण का बिंदु लगाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं हमारी। हाँ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, नहीं तो क्यों, क्या, कैसे। बाबा कहते हैं क क कौन करता है, हाँ, जो कौवा होता है वो क क करता है, और जो हंस होता है वो तो मोती चुभता है। तो हम तो होली हंस है ना, बाबा के बच्चे। तो फिर जैसे ही हम ड्रामा को यूज करते हैं तुरंत हम उससे बाहर निकल आते हैं, हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। ये भी हमें बाबा ने समझाया, नथिंग न्यू, ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है, तो एक बार नहीं पार किया हमने, अनेकों बार, अनगिनत बार पार किया है। तो जो काम हमने अनगिनत बार पार किया है, अनगिनत बार विजयी हम बने हैं, तो अब हमारे लिए कोई मुश्किल तो नहीं है, सहज है, तो हम सहज ही विजयी बन सकते हैं। तो वो हिम्मत आ जाती है, और जहां हिम्मत है वहां फिर बाबा की मदद है। एक कदम हिम्मत का हमारा और बाबा की हजार गुना मदद, हम सहज विजयी हो जाते हैं। तो माया जीत बनना हमारे लिए फिर मुश्किल नहीं है। जब हम विकर्मा जीत की बात करते हैं तो जो हमने पाप कर्म किए हुए हैं, वो विकर्म जो आत्मा पर बोझ है, उसे खत्म करने के लिए योग अग्नि चाहिए। बाबा कहते हैं कि जितना मुझे याद करोगे उतना आपके पाप कर्म भस्म होते जाएंगे, उतना विकर्म नाश होंगे। लेकिन याद भी कौन सी याद, पावरफुल याद चाहिए, ज्वालामुखी योग चाहिए, बिंदु रूप स्थिति का योग ही हमारे पाप कर्मों को भस्म करता है, साधारण याद नहीं। जैसे हम वो एग्जाम्पल दिखाते हैं ना कि लेंस के नीचे कागज रखते हैं सूर्य की धूप में, तो एक मिनट में वो कागज जल जाता है, और वैसे कागज सालों पड़ा रहेगा तो नहीं जलेगा। लाइट तो, सूरज की लाइट तो अभी भी पड़ रही है लेकिन नहीं जलता है, लेकिन जब उस लाइट को फोकस कर दिया, एक पॉइंट पर ले आए, तो मिनटों में कागज जल जाता है। तो बाबा की शक्ति हमें योग में मिल रही है जब भी हम योग करते हैं, लेकिन जब तक वो एकाग्र नहीं की हमने, जब तक हमने वो बिंदु रूप अशरीरी स्थिति विदेही स्थिति के रूप में बाबा की शक्तियों को पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं किया आत्मा पर, तब तक हमारे विकर्म विनाश नहीं होते हैं। और जैसे अग्नि में कोई चीज डालते हैं उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, भट्टी में हम क्यों आते हैं, भट्टी का मतलब ही क्या है ना, तप जाना पूरी तरह से, तो रूप बदलता है। तभी आत्मा पतित से पावन बनती है, महसूस करते हैं हम कि हाँ अब हमारा जो वो पुराना संस्कार था, जो हमारा पुराना स्वभाव था, वो अब परिवर्तन हो रहा है। और फिर उसके साथ साथ नए विकर्म नहीं बनाने हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में अगर हमने कोई विकर्म किए तो 100 गुना दंड, क्योंकि उसका भी हिसाब किताब है। और कर्मातीत बनने की जब हम बात करते हैं तो कर्मातीत स्थिति बाबा उसे कहते हैं जब आत्मा देह से न्यारी होकर के कर्म करती है, देह सहित देह के संबंधों से न्यारा होकर आत्मा समझकर बाबा को याद करना, ये राजयोग है। तो देह बिल्कुल अलग है और मैं देही आत्मा बिल्कुल इस शरीर से अलग हूं ऐसा अनुभव करना, और फिर मैं न्यारी स्थिति में कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, मैं करावनहार आत्मा हूं, ये अनुभव कर्मातीत स्थिति है। दोनों ही बिल्कुल अलग अनुभव हों, जैसे अभी बिल्कुल दोनों साथ हैं तो हमें अलग अनुभव करना कितना मुश्किल लगता है, तो ये बंधन वाली स्थिति है। लेकिन न्यारा अनुभव करना वो कर्मातीत स्थिति है। कर्मातीत स्थिति में हम कर्म संबंध में आते हैं, कर्म का हिसाब किताब नहीं बनता है, लेकिन अगर हम साधारण रीति से कर्म करते हैं तो फिर वो कर्म बंधन हो जाते हैं, कर्म बंधन दुख देते हैं और कर्म संबंध सुख की अनुभूति कराता है, वो अतींद्रिय सुख की हमें अनुभूति कराता है। तो बाबा ये भी कहते हैं कि अगर हमें हिसाब किताब चुकतू करना है, हमारे सामने कर्म भोग आते रहते हैं, तो जब कर्म भोग आते हैं तब उस समय भी साक्षी होकर के मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हिसाब किताब चुकतू कर रही हूं, तो भी महसूस हो कि हिसाब किताब चुकतू करने वाला ये शरीर अलग और मैं आत्मा अलग हूं, तब वो कर्म भोग कर्म योग से सूली से कांटा हो जाएगा, उसका कष्ट हमें अनुभव नहीं होता, उसके दुख से हम परे होते हैं। ये भी कर्मातीत स्थिति है। कर्मातीत स्थिति माना बाबा उसको अव्यक्त फरिश्ता स्थिति भी कहता है, क्योंकि ये अंतिम संपूर्ण स्थिति है, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना, वो तब होगा जब हम कर्मातीत बनेंगे और फरिश्ता कहलाएंगे। और फरिश्ता वो है जो अंतःवाहक शरीर द्वारा कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है माना 1 सेकंड में हम अपने अंतःवाहक शरीर के द्वारा विश्व के किसी भी कोने में जिन भी आत्माओं की हम सेवा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो वो तब होगा जब आत्मा न्यारी होगी, माना सहज, जब चाहे हम शामिल हो जाएं कर्म कर लें, जब चाहे हम न्यारे हो जाएं, वो कंट्रोल हमारे पास होगा। जैसे हम दिखाते ना कछुआ है, उसका अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार है, जब खाना होता है तब वो अपने अंग बाहर निकालता है, खाता है, चलता है और फिर क्या करता है, उसको समेट लेता है। तो ऐसे ही हमारी कर्म इंद्रियों पर हमारा पूरा अधिकार, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों की मालिक हूं, मन बुद्धि संस्कार की भी मैं मालिक हूं। और जैसे बाबा के लिए कहते थे, बाबा क्या करते थे, अपनी कर्म इंद्रियों का दरबार लगाते थे, रोज चेक करते थे बाबा, खासकर मन को विशेष रूप से, कि मेरे मन मंत्री ने सारा दिन श्रीमत अनुसार सोचा या नहीं सोचा, कहीं मनमत और परमत के प्रभाव में तो नहीं आया। परमत कहते हैं हम आसुरी मत, जो जो संसार से हम लेते हैं। तो हमें भी रोज अपने मन को देखना है, अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करना है रोज, कि मेरी कर्मेंद्रियां मेरे अधिकार में हैं। और जब कर्मेंद्रियां पूर्ण अधिकार में हैं, तो वो कर्मातीत स्थिति हमारी होती है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति, मालिकपन की स्थिति। ऐसे ही कर्मातीत स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति भी है, जो साधन महिमा, जैसे बाबा कहता है कि जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको आपकी तपस्या का फल साधन के रूप में मिलेगा, महिमा के रूप में आपके सामने आएगा, लेकिन उसे हमें स्वीकार नहीं करना है। अगर स्वीकार कर लिया तो हम बंधन में आ गए, लेकिन स्वीकार नहीं करना, नहीं करेंगे तो जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है वो हमें कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगी। कर्मातीत बनना माना बेहद की वैराग्य वृत्ति का अनुभव करना, और सदा बेहद की स्थिति में रहना, हद के तेरे मेरे में उससे न्यारे। तो ये हम कहेंगे कि मायाचीत, विकर्माचीत और कर्मातीत अंतिम स्थिति जो है वो हमारी कर्मातीत स्थिति है। ये हम सभी का लक्ष्य है, और जितना जल्दी हम बाबा के समान मायाचीत और कर्मातीत बनते हैं, उतना ही हम समय को भी समीप लाने के निमित्त बनते हैं। ओम शांति।
तुम्हारे साथ का अनुभव